साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अंतर्वास्तव को ग्राम आड़ी पर। दल बदल, विरोधी कानून, चुनौतियां हैं और समाधान क्या है इसके, हम यह एक संदर्भ द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस आदि में प्रकाशित किया गया था। संदर्भ में हाल ही में मणिपुर में सत्ताधारी गठबंधन सरकार गहरे राजनीतिक संकट में फंस गई है। इस राजनीतिक संकट के साथ ही दल बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न लगता दिखाई दे रहा है। बीते दिनों मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित एक सदस्य को आयोग करार दिया गया है, जिससे दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ राजनीतिक पटल के विमर्श में के केंद्र में आ गया है। चुनावी लोकतंत्र का यह घटनाक्रम स्पष्ट तौर पर दल बदल विरोधी कानून में बदलाव की ओर इशारा करता है, क्योंकि इस घटनाक्रम में चुनावी दलों के समक्ष दल बदल विरोधी कानून के दुरुपयोग का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और संभव है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में भी देखने को मिले। मणिपुर में दल बदल की यह राजनीति अनोखी नहीं है। इससे पूर्व कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य भी दल बदल विरोधी कानून के प्रत्यक्षदर्शी रह चुके हैं। इस रिकॉर्डिंग में दल बदल विरोधी कानून, इसकी आवश्यकता, कानून के अपवाद, दल बदल विरोधी कानून की समस्या तथा इसकी प्रासंगिकता के पक्ष विपक्ष के में प्रस्तुत तर्कों का प्रशिक्षण हम करेंगे। दल बदल विरोधी कानून से क्या हमारा तात्पर्य है? वर्ष 1985 में 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय ने संविधान जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो 1970 के दशक में पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी। दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल काफी अहम भूमिका अदा करते हैं और सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं। हाल की आजादी की कुछ ही वर्ष के भीतर क्या महसूस किए जाने लगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। विधायकों और सांसदों के जोर तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगी। 1970 के दशक में आया राम गया राम की राजनीति देश में काफी प्रचलित हो चली थी। दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने 15 दिन के भीतर 3 बार दल बदल कर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्य धारा में ला खड़ा किया। अंततः 1985 में संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लगाया गया। इसके पीछे प्रमुख चुनौतियां हैं, पर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है, सरकार पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करना, संसद में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, पक्ष में तर्क क्या है इसके, दल बदल विरोधी कानून के, राजनीतिक दल के समस्याओं को दल बदलने से रोक हर सरकार की स्थिरता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष 1985 से पूर्व कई बार यह देखा गया कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते हैं, जिसके कारण जल्द ही सरकार गिरने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव आम लोगों हित बनाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता है। दल बदल विरोधी कानून ने सत्ताधारी राजनीतिक दलों को अपनी सत्ता की स्थिरता के बजाय विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। कानूनों के प्रावधान में धन या पद लोपलुप्तता के कारण ही जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाने और अनियमित चुनाव के कारण होने वाले व्यय को नियंत्रित करने में भी मदद की है। साथ ही कानून राजनीतिक दलों की प्रभाविकता के में वृद्धि की है और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमजोर किया है। विपक्ष में क्या तर्क है इनके? लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति का अत्यंत महत्व है, परंतु दल बदल विरोधी कानून की वजह से पार्टी लाइन से अलग हेतु किंतु महत्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि इसके कारण अंतरदलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े समस्याओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। जनता में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु क्या कानून जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है? आगे की इसकी क्या राय हो सकती है? आप भी अपने फोन में नंबर 3 दबा के अपनी बातों को दल बदल विरोधी कानून पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।